Shanti. राजयोग के पूर्व दो सत्र जिसमें योग के आधारभूत दो मूल सत्यों के बारे में कल आपने समझा है, हम स्वयं कौन हैं और पिता परमात्मा कौन है, ये दोनों ही लेसन अगर अच्छी तरह से आपने अटेंड किए हैं तो अवश्य आपको समझ में आया होगा। अब तक हमारे मन और बुद्धि परमात्मा की याद में क्यों एकाग्र नहीं हो पाए, जबकि भक्ति में अनेक प्रकार के साधनों का आधार लेकर अनेक प्रकार के क्रियाकांड हम करते रहे, फिर भी हम परमात्मा की याद में एकाग्र क्यों नहीं हो पाए। प्रथम लेसन से एक कारण आपको स्पष्ट हुआ होगा कि देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, मन की चंचलता का मूल कारण है। जब हम अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप को भूल जाते हैं, खुद को शरीर समझने लगते हैं, शरीर भान में आ जाते हैं, तो उस देह अभिमान के कारण ही मन भटकता है। हम कह सकते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस मन की चंचलता का मूल कारण है। अगर प्रथम लेसन से तीन अभ्यास रोज बार बार आप करते रहेंगे तो बहुत जल्दी अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकेंगे, सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। एक अभ्यास है आत्मस्मृति में रहना, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते देखते बोलते सुनते हमें मन ही मन ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। शरीर से भिन्न हूँ, शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं, ज्योति बिंदु। दूसरा अभ्यास आत्मा दृष्टि, जब भी हम आपस में मिलते हैं बातचीत करते हैं, देखते हैं, हम हर व्यक्ति के मस्तक में देखें कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो हम ये अभ्यास करें कि हमें हरेक को रूहानी दृष्टि से देखना है, देह दृष्टि से नहीं। और तीसरा अभ्यास ये लक्ष्य रखें, सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सो जाते हैं तब तक जो भी कर्म करते हैं आत्मधर्म में स्थित होकर करना है। देह धर्म भिन्न भिन्न है, पर हम सभी आत्माओं का स्वधर्म, हम सबका आत्मधर्म शांति और पवित्रता है। हरेक कार्य शांति से, शुद्धि से, ज्ञान स्वरूप बनकर करना है। हमें कोई भी कर्म गुस्से से, स्वार्थ से, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर ये तीन अभ्यास बार बार आप करेंगे, बहुत जल्दी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकेंगे, सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। ये राजयोग का पहला फाउंडेशन है। आप ये समझ लें कि बॉडी कॉन्शियस रहेंगे तो देह के मित्र संबंधी दुनिया प्रवृत्ति की बातें ही याद आती रहेंगी। सोल कॉन्शियस बनेंगे, आत्मभिमानी बनेंगे तो मन अंतर्मुखी बनेगा, आपका नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा। और कल शाम को राजयोग का दूसरा लेसन हुआ जिसमें पिता परमात्मा का सही परिचय आप सभी ने प्राप्त किया। इस दूसरे लेसन से आपको दूसरा कारण समझ में आ गया होगा कि मन क्यों भटकता था, क्योंकि जिस परमात्मा से मन बुद्धि लगाना हम चाहते थे, हम उस परमात्मा को ही नहीं जानते थे। हमें स्पष्ट ही नहीं था कि आखिर परमात्मा कौन है, देवात्माएं किसको कह सकते हैं, धर्मात्माएं कौन है, महात्माएं कौन है, हम कौन है। भक्ति में हम भावना से अनेकों को भगवान समझते रहते हैं, सबको परमात्मा मानते रहते हैं, लेकिन अब आपको सत्य स्पष्ट हुआ है कि परमात्मा एक ही है और वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली शरीरधारी आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, वो देवात्मा हो सकते हैं, धर्मात्मा महात्मा हो सकते हैं, परमात्मा नहीं हो सकते। अब परमात्मा का सही परिचय आपको मिला है, हमें डायरेक्ट परमात्मा से योग लगाना है। तो अब आप देखिए कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है और परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है, न हम भौतिक है न परमात्मा भौतिक है। शरीर भौतिक है, प्रकृति के पांच तत्वों से बना है, लेकिन हम आत्मा अभौतिक है, दिव्य ज्योति बिंदु है। परमात्मा भी अभौतिक अलौकिक दिव्य परम ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो न हम भौतिक है न परमात्मा भौतिक है, अंडरस्टूड है आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन, कोई प्राकृतिक शक्ति, कोई शारीरिक क्रियाओं से नहीं हो सकता है। चित्र में बताया है कि एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क प्रकाश शक्ति और ध्वनि शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहाँ घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो, मैं बोलूं ही नहीं तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम टेलीफोन के माध्यम से एक दो के संपर्क में रहते हैं, बातचीत करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल के माध्यम से एक दोस्त से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई प्राकृतिक शक्ति या कोई भौतिक साधन के माध्यम से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। हम मनन चिंतन करते हुए परमात्मा प्यार में एकाग्र हो सकते हैं। हम आत्माओं का परमात्मा से कोई फिजिकल मीटिंग नहीं है, ये मनोमिलन है, ये स्नेह मिलन है जो मन और बुद्धि से ही हो सकता है। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता में भी ये स्पष्ट कहा है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मयीं बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे से लगाओ। अब मन और बुद्धि हम कहीं और लगाकर बैठे हैं, हर एक अपने आप को देखिए, हमने अपने मन और बुद्धि कहां अटैच करके रखे हैं? हमने अपने मन बुद्धि व्यक्ति में, वैभव में, धन में, साधन में, पदार्थ में, प्रवृत्ति में, व्यसनों में, बातों में, हमने तो मन बुद्धि वहां अटैच कर दिए हैं, हम तो वहां आसक्त हो गए हैं। और फिर परमात्मा मिलन के लिए बाह्य मेहनत करते रहते हैं। परिणाम हम देखते हैं भक्ति में, भक्ति की साधन सामग्री का ढेर लग जाता है, कितने न क्रियाकांड करते हैं, और रिजल्ट तो यही है कि मन और बुद्धि भटकते ही रहते हैं। भाइयों और बहनों, राजयोग में कोई बाह्याचार नहीं है, राजयोग में कोई क्रियाकांड नहीं है, कोई साधनों का आधार नहीं है। राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। अक्सर योग के नाम पर हम आसन, प्राणायाम की, शारीरिक व्यायाम की क्रियाएं करते रहते हैं, वो फिजिकल योग है, फिजिकल हेल्थ के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। बेशक आप आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, वो शरीर के लिए है। पर जहां तक मन और बुद्धि परमात्मा से जोड़कर मन और बुद्धि को पवित्र शक्तिशाली बनाने की बात है, इसमें कोई आसन प्राणायाम की, शारीरिक क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि जब भी आप राजयोग का अभ्यास करने बैठें, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। आप कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, गद्दी पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आप आराम से बैठिए। आप जानते हैं कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन होती है कि माताएं, बहनें, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते। परमात्मा को याद करने की विधि इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके, कोई ना कर सके। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि फिजिकली रिलैक्स होके बैठिए। यहां आप खुद अपने आप को देखिए, आप कुर्सी सोफा पर आराम से बैठे हैं, फिर भी एक घंटे में कितनी बार आप पांव ऊपर नीचे करते हैं, कितनी बार आप हिलते हैं। अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो इसलिए, और चूंकि शरीर भी अब ऐसे कमजोर रोगी बन गए हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पांव दुखते हैं, हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते। हम अपनी सहज स्थिति में भी नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए राजयोग में शरीर से सहज स्थिति में बैठना है। पर जब भी आप योग अभ्यास करने बैठें, मन से अटेंटिव होकर बैठना है। हमें मन बुद्धि परमात्मा से जोड़ना है, इसलिए मन से अटेंटिव होकर बैठना है कि ये आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा मैं परमात्मा मिलन के लिए बैठी हूँ, प्रभु चिंतन के लिए बैठी हूँ, इस अटेंशन से बैठना है। कि अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी, जीवन की और अनेकानेक बातें सोचने के लिए, फिर वो नौकरी धंधे की बातें हैं, घर गृहस्थी की बातें हैं, समाज संसार की बातें हैं, शरीर की परिवार की बातें हैं, ये अन्य अनेकानेक बातें सोचने के लिए बाकी के 22 घंटे हमारे पास हैं। हम ये नियम बना दें, हम ये अटेंशन रखें कि प्रतिदिन सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा परमात्मा चिंतन के लिए है, प्रभु मिलन के लिए है। उस समय मुझे और बातें नहीं सोचनी है। आजकल फिजिकल आसन प्राणायाम सब सीख रहे हैं। हो सकता है आप में से भी कई होंगे जो पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर घंटा 2 घंटा स्थिर बैठ सकते होंगे। लेकिन आप सोचिए, आसन लगाकर शरीर से स्थिर बैठ गए, पर मन परमात्मा में स्थिर नहीं हुआ, मन बुद्धि परमात्मा में स्थित नहीं हुए, केवल बाह्य शरीर से आप स्थिर बैठ गए, तो क्या फायदा है? हमें तो मन और बुद्धि परमात्मा में स्थित करने हैं। इसलिए परमात्मा जो इस सहज राजयोग का आदि शिक्षक है, परमात्मा हम आत्माओं को यही सिखाते हैं कि आपका शरीर ही एक विचित्र गुफा के समान है, आप आत्माएं मस्तक के आसन पर स्थित है ही, अब और कोई आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है मन और बुद्धि परमात्मा के मनन चिंतन में एकाग्र करने की। इसलिए सबसे पहली बात ये स्पष्ट कर लीजिए कि राजयोग में आपको कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं करनी है। दूसरी बात, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि योग में हम क्या करें? भक्ति में तो मन परमात्मा में लगाने के लिए कोई माला फेरते हैं, कोई मंत्र रटते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं। राजयोग में हमें क्या करना है? तो बहनों और भाइयों, राजयोग में न रटना है, न जपना है, और ना ही मुख से कुछ भी आवाज करना है। हम माला फेरते हैं, मंत्र रटते हैं, ये रटना जपना नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। क्या हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं? क्या हम उनका नाम रटते रहते हैं? महेश भाई, महेश भाई, महेश भाई, क्या हम ऐसा रटते हैं? नहीं, हम उन्हें नेचुरल याद करते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, हम उनका नाम रटते नहीं हैं। ये रटना जपना आर्टिफिशियल औपचारिक क्रियाएं हैं और मन औपचारिक क्रियाओं में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, इसलिए फिर वो भटकना शुरू कर देता है। इसलिए इवन भक्ति में भी आप देखिए ज्ञानी भक्तों ने क्या कहा है। ये कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल रे। इसलिए कबीर जी ने नेक्स्ट दो लाइन में देखिए क्या सजेस्ट किया है कि हाथ का मण का छोड़ दे मन का फेर। ये हाथ से माला के मण के फेरने की बात नहीं है, मन रूपी मणके को फेरना है। स्थिति बदल दी है, बताया ना आपको, खुद को देह समझने के कारण मन बॉडी कॉन्शियस बन गया, मन बहिर्मुखी बन गया है, हमारा मन संसाराभिमुख बन गया है। इसलिए वही बातें हम सोचते रहते हैं। अब मन अंतर्मुखी बनाना है, मन परमात्मा भिमुख करना है। इसलिए देखिए प्रथम पाठ में पहला अभ्यास आत्मचिंतन का आपको बताया गया, ताकि हम मन को अंतर्मुखी कर सके, फिर मन परमात्मा भी मुख करना है। इसलिए राजयोग में न माला फेरनी है, ना ही कोई शब्द मंत्र रटते रहना है, जपते रहना है। अक्सर भक्ति में लोग कोई न कोई गुरुओं से, शास्त्रों से मंत्र लेते हैं और फिर वो मंत्र का जाप करते रहते हैं। पर आप देखिए मंत्र का जाप हम जपते हैं, पर मंत्र के अर्थ को भी कई बार हम समझते नहीं। कई धार्मिक प्रसंगों में, शुभ प्रसंगों में, मांगलिक प्रसंगों में हम ब्राह्मण को, पंडित को, पुजारी को बुलाते हैं और वो मंत्रोच्चार करते हैं। बताइए उपस्थित कितने लोग समझते, कितने लोग अर्थ समझते। जब अर्थ नहीं समझते हैं वो अभ्यास क्या करेंगे, आचरण में क्या लाएंगे। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि मंत्र रटना नहीं है, मंत्र के अर्थ को समझना है और आचरण में धारण करना है। हम ऐसा नहीं है राजयोग में कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति रटना नहीं है। ये कोई सिर्फ बोलने की कहने की प्रथा की बात नहीं है। ओम शांति लिख लिख करके नोटबुक भरने की बात नहीं है। यहां ओम शांति बनना है, हमें शांत आत्मा बनना है, हमें अपनी शांत आत्मा स्थिति बनानी है, न कि ओम शांति रटना है। हम रटते रहते हैं ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, बहुत भावना से हम परमात्मा शिव को नमन भी करते हैं। पर बताइए फिर सारा दिन उस शिव परमात्मा की आज्ञा पर हम कितना चलते हैं। हमें याद भी नहीं रहता है कि वो परमात्मा शिव हमें क्या सिखा रहे हैं। आपका बेटा रोज सुबह उठकर आपको नमन करता है, पांव लगता है, गुड मॉर्निंग कहता है, पर फिर सारा दिन एक भी बात आपकी मानता नहीं है, आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे, आप अपने बेटे को क्या कहेंगे कि भाई ये औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है, पर मैं जो आपको कहता हूं मेरी बात को मानो, मेरे कार्य में मददगार बनो। हमें परमात्मा से सच्चा प्यार है, अगर हमारा परमात्मा के प्रति सच्चा डिवोशन है, रिस्पेक्ट है, तो हम उसकी आज्ञा पर चले, हम उनके ज्ञान को, गुणों को जीवन में धारण करें, हम उनके श्रेष्ठ मत को माने। सिर्फ नमन कर दिया, बोल दिया, इससे क्या होता है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र रटना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को जीवन में धारण करना। और सबसे उत्तम ये है जो परमात्मा के प्रेम मंत्र में मुग्ध है उसे शब्द मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही इस योग में परमात्मा को याद करने के लिए हमें कोई मुख से आरती भजन गाने की आवाज करने की आवश्यकता नहीं है। हम हर आए दिन, हर बार त्योहार तिथि प्रसंगों पर और खास जब श्रावण मास चातुर्मास होता है हम कितना आवाज करते हैं, माइक लगाकर दिन रात जोर जोर से भजन गाते हैं, कितना आवाज करते हैं। पर भाइयों और बहनों, मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड है, यहां हम शरीर धारण करते हैं, आवाज में आते हैं। परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते हैं, वहां ये मुख का आवाज नहीं पहुंचता। इसलिए सोचिए परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है, कौन सा आवाज पहुंचता है। अंतर मन का आवाज परमात्मा को पहुंचता है। हम प्यार से याद करते हैं और वो स्मृति परमात्मा को पहुंच जाती है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। इसलिए हमें आवाज नहीं करना है। राजयोग में हम साइलेंस में बैठते हैं और मन ही मन प्यार से उस पिता को याद करते हैं। तो राजयोग में न रटना है, न जपना है, न कुछ भी गाना बजाना, आवाज करना है। तीसरी बात, अक्सर लोग पूछते हैं हम योग कहाँ लगाएं, हम ध्यान कहाँ केंद्रित करें, क्योंकि भक्ति में तो हम सामने मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं, फोटो रखते हैं, दीवा जलाते हैं, बिंदु पर मन एकाग्र करते हैं। राजयोग में हमें मन बुद्धि कहाँ लगाने हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब आप सिर्फ भक्त आत्मा नहीं हैं, अब आप भी ज्ञानी तु आत्मा है। कल आपने दोनों लेसन अटेंड किए हैं, अब आप खुद विवेक से बताइए हमें योग कहाँ लगाना है, किससे लगाना है, किससे लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से या फोटो से बुद्धि नहीं लगाने। चलो भक्ति में हम परमात्मा को नहीं जानते थे, बेशक हम भक्ति में परमात्मा को मानते थे, पर यथार्थ स्वरूप से जानते नहीं थे। तो आप देखते हैं हरेक ने अपनी अपनी भावना से अपने अपने इष्ट के चित्र मूर्ति फोटो मंदिर बनाकर रख दिए, पर अब हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिला है कि परमात्मा तो एक ही है और वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा कोई हमारे जैसा शरीरधारी नहीं है, इन आंखों से देखने की बात नहीं है, हमें मन की आंख से परमात्मा के दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप को देखना है और बुद्धि से याद करना है। भक्ति में अनुभव है कि सामने मूर्ति चित्र फोटो होते हुए भी मंदिर में खड़े हैं, मूर्ति के सामने खड़े हैं, फिर भी मन भटकता रहा है, मन में दूसरी ही मूरतें घूमती रही। आखिर कब तक हम ये आधार लेंगे? अब जबकि हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिला है, अब हमें एक कदम आगे बढ़ना है। अब हमें भक्त आत्मा से ज्ञानी आत्मा बनना है और ज्ञानी आत्मा बनकर योगी आत्मा बनना है। हमें मन और बुद्धि उस परमात्मा की याद में लगाना। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, अभी इस हॉल में आप सूर्य नहीं देख रहे, पर जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया? मन की आंख से देखा ना, मन की आंख से विजुअलाइज किया, क्योंकि बुद्धि में सूर्य के बारे में ज्ञान है कि सूर्य आसमान में वो प्रकाशमान गोला है जो हमें नित्य रोशनी और ऊर्जा देता है। तो आपने मन की आंख से विजुअलाइज किया। अब परमात्मा का सत्य ज्ञान हमें मिला है, परमात्मा शरीरधारी है ही नहीं, हम भी ज्योति बिंदु आत्मा है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। मन की आंख से देखना है और बुद्धि से याद करना है। इसलिए यहाँ जो भी चित्र मूर्ति फोटो आप देख रहे हैं, इवन हमारे म्यूजियम में, हमारे हर सेवा केंद्र में अनेकानेक ज्ञान के चित्र लगे हुए होते हैं, ये ज्ञान समझाने के लिए है। हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना। ये जो पॉइंट ऑफ लाइट का रेड सिंबल है, वो भी समझाने के लिए है कि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो समझाने के लिए है, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। योग की सिंपल व्याख्या मैं आपको बताऊं, परमात्मा जो है, जैसा है और जहां रहता है वहां मन बुद्धि लगाना, उसे योग कहते हैं, उसे योग कहते हैं। वो जो है अब सारी महिमा आप जानते हैं कि परमात्मा हम आत्माओं के परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, पतित पावन है, प्यार का सागर है, सर्वशक्तिमान है, वो जो है और जैसा है। कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप, और जहां रहता है उस परम धाम में ज्योति बिंदु परमात्मा से मन बुद्धि लगाने हैं। अपनी अपनी भावना से, अपनी अपनी मान्यता अनुसार भगवान को याद करना, उसे भक्ति कहते हैं। वो हम अपनी मान्यता अनुसार करते हैं, सिर्फ भावना से करते हैं, सत्य नहीं जानते हैं। ये अंतर है भक्ति और योग में। इसलिए सिंपल बात, परमात्मा जो है, जैसा है, जहां रहता है वहां मन बुद्धि लगाकर उसे याद करना, उसे योग कहते हैं। तो राजयोग में कोई साधनों का भी आधार नहीं। राजयोग सहज योग है। हम हर कोई योगी बन सकते हैं। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। घर गृहस्थ में रहते हुए हम अपने जीवन को पवित्र योगी बना सकते हैं। जब हम परमात्मा का ये दिव्य संदेश सभी आत्माओं को सुनाते हैं तो अक्सर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं। हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, हमारे पर अनेक जिम्मेवारियां हैं, हम अनेक संबंधों में बंधे हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि गलत मान्यताएं हैं, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। लोग ये समझते हैं कि योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, कहीं शांत एकांत में जाकर बैठे तो मन परमात्मा में लग सकता है। और भक्ति मार्ग में अधिकतर जो योगी तपस्वी हुए, घर बार छोड़कर हुए, तो लोग सोचते हैं कि हम तो घर बार छोड़ नहीं सकते हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं। लेकिन देखिए राजयोग क्या सिखाता है। राजयोग हमें क्या सिखाता है? हमें घर बार, संबंध, परिवार, जिम्मेवारियां, हमें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें देहभान को छोड़ने की आवश्यकता। देहभान मन की चंचलता का मूल कारण है, न कि संबंध, जिम्मेवारियां, न कि प्रवृत्ति। इसलिए योगी बनने के लिए न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलना है। ऐसा नहीं है कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से या सफेद वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता है। ये तो बाह्य चीजें हैं। ये सफेद वस्त्र इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है। हर विद्यालय, हर ऑर्गेनाइजेशन हर कंपनी का अपना यूनिफॉर्म होता है, ये हमारा यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में समर्पित है इसलिए हम फुल टाइम पहनते हैं, पर केवल सफेद कपड़े पहन लेने से योगी नहीं बन जाते हैं। हमें योगी बनने के लिए आंतरिक परिवर्तन करना है, हमें अपनी स्मृति वृत्ति दृष्टि बदलनी है, केवल बाह्य ड्रेस बदलने की बात नहीं। स्थान नहीं स्थिति बदलनी है। कई मेहमान हमें कहते हैं बहन जी दिल करता है हम भी यहाँ रह जाएं, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ रहते भी योगी बन सकते हैं, इस ज्ञान और योग को साथ ले जाने की जरूरत है। हमें अपनी मनोस्थिति चेंज कर दी, इसलिए योगी बनने के लिए न माथा मुंडाना है, न जटा बढ़ानी है, न कोई दाढ़ी बढ़ानी है। भाइयों और बहनों, सिंपल अर्थ है योगी बनना माना योग्य बनना। भगवान के बच्चे कहलाने लायक बनना है। हम परमात्मा के लिए तो गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, क्या हम अपने आप को भगवान के बच्चे कहलाने लायक हैं? हमें लायक बनना है, योग्य बनना है। बस योगी बनना माना भगवान के सच्चे बच्चे बनना है। इसलिए राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है, सिर्फ पूजा पाठ धूप दीप भजन कीर्तन करके खुश हो जाने की बात नहीं है। हम भक्ति में नियम से सुबह शाम धूप दीप भजन कीर्तन आरती करके हम खुश हो जाते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, पर हमारे आचरण में कोई परिवर्तन नहीं। राजयोग का ध्येय सिर्फ पूजन वंदन नमन गायन दर्शन अर्चन करके खुश होने का नहीं है। राजयोग का ध्येय पुजारी से पूज्य बनना है, पतित से पावन बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, हमें स्वयं महान बनना है। इसलिए परमात्मा को याद करने में भी देखिए कोई जोर जोर से परमात्मा को पुकारते हैं चिल्लाते हैं, माइक लगाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर, ओ गॉड, हे भगवान, चिल्लाना नहीं है, आवाज नहीं करना है। बताया ना, मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है, इसलिए चिल्लाना पुकारना आवाज नहीं करना है। दूसरा बताया है हम कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, पर अक्सर लोग परमात्मा से मांगते ही रहते हैं, हे भगवान विद्या दो बुद्धि दो धन दो तंदुरुस्ती दो मेरा ये काम कर दो, हम भगवान से मांगते रहते हैं। राजयोग में हम परमात्मा से मांगते नहीं। बताइए क्यों नहीं मांग रहा है, क्यों नहीं मांग रहा है? हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम परमात्मा के वारिस हैं। परमात्मा से प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें मांगना नहीं है, हमें लायक बच्चा बनना है। लायक बच्चे को माँ बाप अपने आप देते देते हैं कि नहीं देते? लायक बच्चे के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं। खुद नहीं खाते हैं, नहीं पहनते हैं, बच्चों के लिए खर्च करते हैं। हमें मांगना नहीं है, हमें लायक बच्चा बनना है। तो उनकी याद से ही प्राप्ति है, उनकी स्मृति से ही समृद्धि आ जाती है। हमें मांगना नहीं, पिता दाता है, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, पिता दाता और बच्चा मांगता? हमें बच्चा बनना है और योग्य बनना है। हमें परमात्मा को प्रार्थना भी करने की आवश्यकता नहीं। अक्सर हम बड़े दीन हीन मजबूर लाचार बनकर ईश्वर को प्रार्थना करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं, इतनी शक्ति देना, ये करना वो करना। हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही दाता है। वो तो है ही दाता, सदा दाता है, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता, वो तो है ही दाता। वो दे ही रहा है। हम कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है। वो सागर है, अखुट भंडार है, दाता है, वो सदा देते हैं। हमें खुद में सोचने की, स्वदर्शन करने की, आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि परमात्मा दाता है, दे ही रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? अपने आप में कारण खोजिए ना। वो तो निरंतर दे रहा है। देखो प्रकृति जगत का सूर्य, वो निरंतर रोशनी दे रहा है। हमें उनको कहना नहीं पड़ता है रोशनी दो, ऊर्जा दो। वो है ही एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट एंड माइट। वो अपने आप दे ही रहा है। परमात्मा को कहने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही दयालु कृपालु। पर हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा परमात्मा से योग नहीं। भाइयों और बहनों, योग मीन्स कनेक्शन। हमारा परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं रहा। आपके शहर में पावर हाउस है, पर आपको घर में बिजली तो तब मिलेगी ना जब आप कनेक्शन करेंगे। परमात्मा लाइट हाउस, माइट हाउस है, वो स्पिरिचुअल पावर हाउस है। पर हमारा उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं। देखिए हर एक अपने आप को देखिए, हमने अपने मन और बुद्धि की तार कहां जोड़ी हुई है? हम परमात्मा से अटैच है ही नहीं ना, हम तो अटैच है व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, व्यसनों में, आदतों में, हम तो वहां अटैच है। और फिर हम परमात्मा को योग करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए मेहनत करते रहते। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने मन और बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ने की जरूरत। इसलिए खुद को शरीर से अलग आत्मा समझकर मन बुद्धि परमात्मा से जोड़ना, उनके मनन चिंतन में रहना, उसका नाम योग है। बस और कुछ नहीं करना। योग मीन्स रिलेशन, भगवान से संबंध जोड़ना है। एक बच्चा पैदा होते ही पिता की करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस बन गया, क्या किया? रिलेशन, संबंध से अधिकार मिलता है। परमात्मा के साथ हमारा प्रैक्टिकल कोई रिलेशन ही नहीं, हम तो देह संबंधों में खो गए। भक्ति में हम भगवान के साथ सर्व संबंधों का गायन करते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं? कौन सा श्लोक बोलते हैं? सर्व संबंधों का वर्णन करते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, गाते हैं ना? राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें भगवान के साथ संबंधों का वर्णन करने की जरूरत नहीं, निभाने की जरूरत। क्या घर में आप रोज अपने माँ बाप के सामने बैठकर रोज गाते हो क्या? तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे दादा हो, रोज गायन करते हो क्या? नहीं, आपको परख है, आपको निश्चय है कि यही मेरे माँ बाप है। रोज गाने की, वर्णन करने की जरूरत नहीं है, रिलेशन फॉलो करने की जरूरत। हमें परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ने हैं और मन वचन कर्म से निभाने हैं, तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। आप अधिकारी बन जाते, गायन करने की जरूरत नहीं। परमात्मा, आप जानते हैं ना कि ये जो मित्र संबंधी है, ये देह के मित्र संबंधी, ये शरीर के माता पिता भाई बहन है, और ये एक जन्म के है। ये शरीर छूटेगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएगा। नया शरीर लेंगे, नए माँ बाप भाई बहन मिलते हैं, तो हमें स्पष्ट होना चाहिए ये देह के संबंध हैं, एक जन्म के संबंध है। लेकिन मुझ आत्मा के अविनाशी माँ बाप कौन है? परमात्मा है। ये निश्चय चाहिए कि परमात्मा ही मेरे माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व है। जब मेरे सर्व संबंध परमात्मा से हैं, तो मुझे हर बात में, हर आवश्यकता में, हर परिस्थिति में, हर समय मुझे कौन याद आएगा? वही याद आएगा ना। मेहनत की बात ही नहीं है। बिल्कुल इजी वे हैं भगवान से संबंध जोड़ो। और लास्ट बात, जीवन में संबंध भी अनेक हैं, पर इन अनेक अनेक संबंधों में हमें बहुत जिगरी कौन याद आते हैं, किसकी याद आती है? मित्र संबंधी तो बहुत है, पर हमें बहुत जिगरी किसकी याद आती, किसकी याद आती? जिससे दिल का सच्चा प्यार हो, वो हमें बहुत याद आते हैं। हमें उनको याद करना नहीं पड़ता है, वो हमें अपने आप याद आते हैं। बल्कि जितना हमारा अनन्य प्यार, हम कहते हैं कि मुझे सिर्फ याद आती नहीं है, मुझे तो उनकी याद सताती है। मैं भूलना चाहूं तो भी नहीं भूल सकती। परमात्मा की याद हमें निरंतर आती रहे, हम भूले नहीं, उसका आधार दिल का सच्चा प्यार है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि हमारा मन भटकता है, हमारा मन परमात्मा में एकाग्र नहीं हो रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? आपको परमात्मा से सच्चा प्यार नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है। जहाँ प्यार है वहाँ मन मग्न हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आप अपने आप को चेक करिए। परमात्मा को हम याद करते हैं, पर कैसे याद करते हैं? कोई सिर्फ मतलब से याद करते, हमें उनसे कुछ चाहिए इसलिए स्वार्थ से याद करते हैं, और वो पाने के लिए भगवान को मनाते रहते हैं, लालच भी देते रहते हैं कि मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये यात्रा करूंगी, कथा करूंगी। हम भगवान को भी लालच देते रहते हैं, ये स्वार्थ से याद करते हैं, मतलब से याद। कोई सिर्फ नियम से याद करते हैं कि बस हमारा नियम है, हम सुबह शाम पूजा पाठ भक्ति कर लेते हैं, बस हम खुश हैं। हमारे बाप दादा करते थे, हम भी करते, मेरी सास करती थी, मैं भी करती हूँ, बस नियम से काम पूरा कर दिया। न प्यार है न समझ है। कोई भय से भक्ति करते हैं, भय है कहीं मैं मर न जाऊं, मुझे कोई बीमारी न लग जाए। कईयों को भय है मेरे गड़बड़ घोटाले खुल न जाएं, मेरे पाप फूट न जाएं, इसलिए भगवान को खुश करते रहते हैं। भय से भक्ति करते हैं। हम सच्ची समझ और सच्चे प्यार से कहां याद करते हैं? तो ये विधि आपको बताई गई, जो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को सिखाई है। इसमें कोई बाह्याचार नहीं है, समझना है, भगवान से प्यार करना है और अभ्यास करना है। लास्ट बात, राजयोग इतना इजी एंड नेचुरल है, योग अभ्यास के समय आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं। अक्सर परमात्मा को याद करने बैठते हैं लोग, आंख बंद करके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है कि आंखें खुली रहेगी सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए आंख बंद करके बैठते हैं। पर मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? क्या रिजल्ट है? भटकता है ना? इससे क्या सिद्ध होता है कि आंख नहीं देखती है, मन देखता है। आंख तो बाह्य देखने के साधन है, मुख बोलने का साधन है, कान सुनने का साधन है, पर सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली मैं आत्मा हूं, मेरे मन और बुद्धि है। हमने बाह्य आंखें बंद कर दी पर मन की आंखें घूम रही है, तो फायदा क्या है? बाह्य आंखें खुली रखिए, मन परमात्मा के प्रति फोकस करना है। तो हजारों बैठे हो तो भी कोई याद नहीं आएगा, और हम आंख कितना समय बंद कर सकेंगे बताइए? आखिर हमें नौकरी, धंधा, घर, कारोबार भी संभालना है, तो क्यों नहीं हम अभ्यास ऐसा सीखें, आंखें खुली हो, मन परमात्मा में एकाग्र। तो ये है राजयोग की विधि, प्रैक्टिकली किस विधि से अभ्यास करना है। मैं चाहूंगी हम 5 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और आज का अभ्यास विधि पूर्वक हम करेंगे। अब तक आप अपनी अपनी मान्यता अनुसार, अपनी रीति विधि से भगवान को याद करते रहे, आज सत्य ज्ञान और यथार्थ विधि से हम उस पिता को याद करेंगे। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाएं, अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दीजिए, हाथ में, गोद में लेके ना बैठे, कमर सीधी करके बैठे ताकि आप थके नहीं। एक दूसरे से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठे। आंखें नेचुरल खुली रहने दें। परमात्मा को याद करना सर्वश्रेष्ठ कार्य है, बहुत ही खुशी से, गर्व से, उन्नत मस्तक से उस पिता को याद करना है। इसलिए कोई भी आंख बंद कर, सिर झुकाकर नहीं बैठेंगे। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं। हमेशा योग अभ्यास कराने सामने कोई नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए हमारे आप देख रहे हैं हमारे हरेक मेडिटेशन रूम में, हरेक हॉल में सर्वश्रेष्ठ योगी ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा हुआ है कि जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं, हमें भी शिव बाबा को याद करना है। एक दो को देखते हैं, भल देखने में शरीर आते हैं, पर बुद्धि से समझना है मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, हम आत्माएं शिव बाबा की याद में बैठी। मुझ आत्मा का असली घर परम धाम है, जहाँ पिता परमात्मा भी निवास करते हैं। हम शरीर से यहाँ बैठेंगे, मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में जाएंगे। परम ज्योति बिंदु शिव पिता को मन की आंख से देखें, मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता, आपके सत्य ज्ञान को प्राप्त कर मुझे अपार खुशी हो रही है। अब मेरा यही लक्ष्य है मेरे प्यारे शिव पिता, जैसे आप शांति के सागर शांति दाता है, मैं आत्मा आपकी संतान, मैं भी शांत स्वरूप, शांति मेरा स्वधर्म है। मैं स्वयं शांत रहूंगी, शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। मेरे प्यारे शिव बाबा, अब सर्वशक्तिमान सदा पावन पिता है। आपकी याद से मैं आत्मा भी पावन बनती जा रही हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे यही निश्चय और खुशी है, मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान, मैं स्वयं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, मैं स्वयं एक शक्ति हूँ। ओम शांति।